तो आज हम जिस किताब पर बात करने वाले हैं वो है एमिली सेंट जॉन मैंडल का उपन्यास सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। मैंडल की खासियत है वो साइंस फिक्शन को बहुत ही गहरी और मानवीय कहानियों से मिला देती हैं।
हाँ, जिन्होंने उनका उपन्यास स्टेशन 11 पढ़ा है वो ये बात जानते हैं कि मैंडल दुनिया के खत्म होने जैसी बड़ी घटनाओं के बीच भी इंसानियत को नहीं भूलती।
बिल्कुल, और सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी तो शायद इसी हुनर का सबसे अच्छा उदाहरण है।
और एक दिलचस्प बात है, ये उपन्यास कोविड-19 महामारी के दौरान लिखा गया था।
अच्छा।
हाँ, और वो जो अकेलापन था, वो अनिश्चितता, वो सब कहानी में बहुत साफ महसूस होता है।
ये कहानी 5 सदियों में फैली है, 1912 से लेकर
2401 तक।
हाँ, 2401 तक। और इन अलग अलग दौर को एक बहुत ही अजीब और रहस्यमयी घटना आपस में जोड़ती है,
एक विसंगति या एनोमली कह सकते हैं।
हाँ, एक ऐसा पल जो इतिहास में बार बार दोहराया जाता है। और यहीं से उपन्यास अपना सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि हमारी ये जो वास्तविकता है, क्या ये सच में वास्तविक है
या हम सब एक बहुत ही उन्नत कंप्यूटर सिमुलेशन का हिस्सा है।
यही सिमुलेशन थ्योरी इस कहानी के दिल में है। तो चलिए इस रहस्य की पहली परत खोलते हैं।
जरूर, कहानी हमें ले जाती है साल 1912 में। हमारा पहला पात्र है एडविन सेंट एंड्रू, एक अमीर अंग्रेज परिवार का बेटा है, लेकिन थोड़ा बाघी किस्म का।
अच्छा, किस तरह से?
वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद पर सवाल उठाता है तो उसके घर वाले उसे सजा के तौर पे घर से दूर भेज देते हैं।
कहाँ?
कनाडा के खूबसूरत लेकिन बिल्कुल वीरान जंगलों में। वो वहां अकेला है, अपनी पहचान को लेकर उलझा हुआ है।
यानी वो पहले से ही एक तरह के विस्थापन में जी रहा है, अपनी दुनिया से कटा हुआ।
बिल्कुल, और एक दिन वैंकूवर द्वीप के उसी घने जंगल में उसके साथ वो अजीब घटना होती है।
वही विसंगति।
हाँ, एक पल के लिए अचानक सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। उसे वायलिन का संगीत सुनाई देता है और ऐसा लगता है जैसे वो जंगल में नहीं बल्कि किसी बहुत बड़े अंधेरे कॉन्सर्ट हॉल या शायद ट्रेन स्टेशन में खड़ा है।
और फिर?
फिर एक पल बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। ये अनुभव उसके दिमाग में हमेशा के लिए अटक जाता है।
वो उसे समझ ही नहीं पाता होगा, क्या ये कोई सपना था या कोई वहम?
उसे कोई जवाब नहीं मिलता, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ठीक एक सदी बाद यही पहेली दोबारा सामने आएगी,
और इस बार टेक्नोलॉजी की वजह से।
हाँ, अब हम आते हैं साल 2020 में।
यहाँ हम मिलते हैं मिरेला कैसलर से। मिरेला भी मतलब अपने अतीत की कुछ उलझनों से जूझ रही है।
और एक दिन वो इंटरनेट पर एक वीडियो देखती है। ये वीडियो एक संगीतकार पॉल स्मिथ का है और वो ठीक उसी जंगल में परफॉर्म कर रहा है जहाँ एक सदी पहले एडविन था।
अरे वाह।
और वीडियो के बीच में अचानक पॉल के साथ भी वही होता है।
क्या? वही अंधेरा,
वही अंधेरा, वही वायलिन, वही किसी दूसरी जगह होने का एहसास। और सबसे बड़ी बात,
सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है।
बिल्कुल, अब जो पहले सिर्फ एक इंसान की याद थी वो एक डिजिटल सबूत बन गया है।
तो ये कोई संयोग तो नहीं हो सकता? एक पैटर्न उभर रहा है।
ऐसा लगता है जैसे वास्तविकता के ताने बाने में कोई ग्लिच है, कोई गड़बड़ी।
और ये ग्लिच सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं होता बल्कि कला में भी अपनी जगह बना लेता है।
हाँ, अब कहानी हमें 200 साल आगे ले जाती है, 2203 में। यहाँ हम मिलते हैं ओलिव लेवलिन से। वो चंद्रमा पर बनी एक कॉलोनी में रहती है और एक बहुत मशहूर लेखिका है।
उसकी एक किताब मेरियन पैड, जो एक महामारी के बारे में है, वो बेस्ट सेलर बन चुकी है।
और वो उसी के प्रचार के लिए पृथ्वी पर बुक टूर पर आई है।
ओलिव का किरदार ऐसा लगता है जैसे वो खुद लेखिका एमिली सेंट जॉन मैंडल की परछाई है।
हाँ, वो प्रसिद्धि की थकान, अपने परिवार से दूर रहने का दर्द, ये सब कहानी का भावनात्मक केंद्र बन जाता है।
लेकिन उसका इस रहस्य से क्या लेना देना है?
उसका लेना देना है उसकी कला से। उसकी किताब मैरियन बैड में एक सीन है जिसमें एक पात्र ठीक उसी विसंगति का अनुभव करता है, अंधेरा, वायलिन, कॉन्सर्ट हॉल।
कमाल है।
हाँ, और जब एक इंटरव्यू में उसे पूछा जाता है कि ये आइडिया कहाँ से आया, तो वो बताती है कि उसने सालों पहले इंटरनेट पर एक वीडियो का टुकड़ा देखा था।
वही वीडियो?
वही वीडियो। तो कला ने अनजाने में ही उस सच को पकड़ लिया जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था।
सोचिए जरा, एक अनुभव जो 1912 में हुआ, 2020 में रिकॉर्ड हुआ और 2203 में एक उपन्यास का हिस्सा बन गया।
समय के धागे वाकई एक दूसरे से जुड़े हैं।
लेकिन अब तक ये सब पहेलियां हैं, अब वक्त है उस किरदार के आने का जो इन पहेलियों को सुलझाने की कोशिश करेगा।
बिल्कुल, अब हम चलते हैं 2 सदी और आगे, साल 2401 में।
साल 2401, चंद्रमा पर बसा एक भविष्य का शहर नाइट सिटी,
और यहाँ हमारी मुलाकात होती है गैस्पेरी जैक्स रॉबर्ट से।
गैस्पेरी टाइम इंस्टीट्यूट नाम की एक खुफिया संस्था में काम करता है।
इस संस्था के पास टाइम ट्रैवल की तकनीक है।
और उनका मकसद?
उनका सिर्फ एक मकसद है, इतिहास में जाकर इन विसंगतियों की जांच करना।
और ये जांच क्यों हो रही है?
क्योंकि टाइम इंस्टीट्यूट वो सिमुलेशन परिकल्पना को बहुत गंभीरता से लेता है
कि हमारी पूरी दुनिया, हमारा इतिहास, हमारे एहसास सब एक विशाल कंप्यूटर सिमुलेशन हो सकते हैं।
हाँ, और ये जो बार बार होने वाली घटनाएं हैं, ये उस सिमुलेशन में आई कोई तकनीकी खराबी, कोई ग्लिच हो सकती है।
तो गैस्पेरी का काम इन ग्लिच का पता लगाना है।
लेकिन इसके काम का एक बहुत सख्त नियम है, सबसे बड़ा नियम।
क्या?
तुम इतिहास में जा सकते हो, देख सकते हो, लेकिन कभी भी किसी भी हालत में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।
तुम सिर्फ एक दर्शक हो, कहानी का हिस्सा नहीं बन सकते।
बिल्कुल, और यहीं से गैस्पेरी का असली संघर्ष शुरू होता है।
तो वो अपनी जांच शुरू करता है, वो एक तरह से कहानी की रीढ़ की हड्डी बन जाता है।
हाँ, वो पत्रकार बनकर 1912 में एडविन से मिलता है, फिर वो 2203 में ऑलिव से मिलता है, जो अपने बुक टूर से थक चुकी है और घर जाने के लिए तड़प रही है।
और जैसे जैसे वो इन लोगों के साथ वक्त बिताता है, वो पेशेवर दूरी खत्म होने लगती है।
हाँ, वो उन्हें सिर्फ डेटा की तरह नहीं देख पाता, वो उसे जीते जागते भावनाओं से भरे इंसान नजर आने लगते हैं।
और यही कहानी का पहला बड़ा नैतिक मोड़ आता है।
गैस्पेरी को पता होता है कि ऑलिव के बुक टूर खत्म करने के कुछ ही समय बाद पृथ्वी पर एक भयानक महामारी फैलने वाली है,
और वो ऑलिव की अपने परिवार के पास लौटने की बेचैनी देखता है
और वो नियम तोड़ देता है।
पर कैसे? वो सीधे सीधे तो कुछ नहीं कह सकता।
नहीं, वो बहुत होशियारी से बातों बातों में उसे एक छोटी सी चेतावनी देता है। वो कहता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं घर चला जाता, बस इतना ही।
और ये छोटा सा हस्तक्षेप ऑलिव की जिंदगी बदल देता है।
हाँ, वो अपना टूर बीच में ही छोड़कर चंद्रमा पर अपने घर लौट जाती है और आने वाली महामारी से बच जाती है।
ये गैस्पेरी का करुणा से प्रेरित पहला विद्रोही कदम था।
और यहाँ से कहानी सिर्फ एक साइंस फिक्शन रहस्य नहीं रह जाती।
लेकिन वो बड़ा सवाल अब भी है, ये विसंगति आखिर है क्या?
इसका जवाब गैस्पेरी को टाइम इंस्टीट्यूट से नहीं बल्कि उसकी बहन जोई से मिलता है।
अच्छा।
जोई एक वैज्ञानिक है और वो एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा खूबसूरत थ्योरी पेश करती है। वो कहती है, क्या हो अगर ये विसंगति सिमुलेशन में कोई गड़बड़ी नहीं है?
तो फिर क्या है?
बल्कि ये सिमुलेशन के निर्माण का ही एक पल है।
मतलब?
जिस पल भविष्य में किसी ने सिमुलेशन को शुरू किया, उस पल की गूंज उस कमरे में बज रहा वायलिन का संगीत।
वो एक प्रतिध्वनि की तरह सिमुलेशन के अंदर अलग अलग समय पर सुनाई देता है।
तो सिमुलेशन टूट नहीं रहा है,
बल्कि वो अपने जन्म का गीत गा रहा है। ये कोई बग नहीं है, ये एक फीचर है।
बिल्कुल, और इस एक खुलासे से पूरी कहानी का मतलब ही बदल जाता है।
ये उपन्यास के सबसे जरूरी विचार को सामने लाता है।
एक सिमुलेशन में जिया गया जीवन भी एक जीवन है, और यही एकमात्र जीवन है जो हमारे पास है।
मतलब इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि हमारी वास्तविकता का आधार क्या है?
अगर हमारा प्यार सच्चा है, हमारा दुख सच्चा है, हमारी दया सच्ची है, तो सब कुछ सच्चा है।
हाँ, ये एक बहुत ताकतवर विचार है। लेकिन गैस्पेरी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।
नहीं, उसे अपनी जांच में पता चलता है कि ऑलिव की मौत भविष्य में एक हवाई अड्डे पर छत गिरने से होने वाली है।
उसे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये इतिहास का तयशुदा हिस्सा है।
लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाता, वो फिर से नियम तोड़ता है, समय पर उस हवाई अड्डे पर पहुंचता है
और ऑलिव को वहां से हटाकर उसकी जान बचा लेता है।
हाँ, लेकिन इस बार वो पकड़ा जाता है
और सजा के तौर पर
उसकी याददाश्त मिटाई जा सकती है।
लेकिन यहाँ कहानी में एक और अप्रत्याशित मोड़ आता है, दयालुता का एक और पल। गैस्पेरी की बॉस एरेटा उसे एक विकल्प देती है।
वो कहती है कि वो अपना बाकी जीवन बिताने के लिए इतिहास में कोई एक समय और स्थान चुन सकता है, और गैस्पेरी का चुनाव कहानी को एक बेहद खूबसूरत अंत देता है।
वो कहाँ जाता है?
वो 20वीं सदी के आखिर में ओहायो में बसने का फैसला करता है।
ओहायो, ये तो वही जगह है जहाँ ऑलिव का बचपन बीता था।
हाँ, और अंत में यह खुलासा होता है कि गैस्पेरी ही ऑलिव की बचपन की धुंधली यादों का वो दयालु अजनबी बूढ़ा आदमी बन जाता है, जिसने एक बार उसकी टूटी हुई साइकिल ठीक करने में मदद की थी।
सच में ये एक ऐसा अंत है जो दिमाग से ज्यादा दिल पर असर करता है।
कहानी का अंत किसी बड़े रहस्योद्घाटन से नहीं बल्कि मानवीय जुड़ाव की इस खामोश पुष्टि के साथ होता है।
तो अगर हमें सुपन्यास के मुख्य विषयों को समेटें तो सबसे पहला तो यही है कि प्रामाणिकता हमारे रिश्तों और भावनाओं से आती है,
और दूसरा, समय एक सीधी रेखा नहीं बल्कि एक विशाल जाल है जहां एक सदी में लिया गया एक फैसला दूसरी सदी में किसी की जिंदगी बचा सकता है।
और कला की ताकत भी। ओलिव का उपन्यास उस सच को पकड़ लेता है जिसे विज्ञान समझने की कोशिश कर रहा था।
और आखिर में सबसे बड़ा थीम है, एक भावहीन नियमों से बंधी व्यवस्था के खिलाफ दयालुता का विद्रोह।
ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी दुनिया भले ही अनिश्चित हो, लेकिन हमारे चुनाव, खासकर दयालुता के चुनाव, समय के आर पार गूंजने वाले सुंदर पैटर्न बनाते हैं।
और शायद जीवन का असली मतलब किसी बड़ी व्यवस्था को समझने में नहीं बल्कि उसके भीतर बनाए गए छोटे छोटे मानवीय संबंधों में छिपा है। ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।